अजय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज जनवल्लभ गिरिवर रारी गोपी जनवल्लभ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ यशोदानन ब्रज जन रंजन यशोदानन यशोदानन ब्रज जन रंजन यमुना तीरगन राधा माधव कुंज बिहारी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ यशोदानंद ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा मुना तिरमुना यमुना तीरवन सारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जनवल्लभ गिरिवर गोपी जनवल्लभ आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर गोपी जनवल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरवर चारी यमुना जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भव तुमी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी गौर निताई जय गौर निताई जगन्नाथ जय
પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્યરિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ મહારાજ કી જય. અનંત કોટી વૈષ્ણવિંદ કી જય. શ્રી રાધા કી હરિ ભગવાન કી જય. જય રામનાથે બલભદ્ર સુભદ્રા જીવ કી જય. શ્રી રાધા ગિરિધારી ભગવાન કી જય. યુગ ધર્મ નામ સંકીર્તન કી જય. ગૌર નિતાય કી જય. નિતાય ગૌર હરિ પ્રમાનંદે. સમાગત ભક્તવિંદ કી જય. સમાગત ભક્તવિંદ કી જય. સમાગત ભક્તવિંદ કી જય. જય શ્રી શ્રી ગુરુવર્ગરાંગ મહાપ્રભુ કી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયં મુદીરે. નષ્ટપ્રાયેષુ ભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોક ભક્તિર ભવતી નૈષ્ટકે. અમજ્ઞાનતિમિરંધસ્ જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુલ્મિલિતં જૈન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિતં જૈન ભૂતલે સ્વયં રૂપકદામહ્યં દદાતિ સ્વપદંતિકં. વંદેહં શ્રી ગુરૌ શ્રીયુત પદકમલં શ્રી ગુરૂર્ન વૈષ્ણવંશ શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથન વિદં સદિ સાદ્વૈતં સાદૂતં પરિજન સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્યદેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતં. મુખં કરોતિ વાચાલં પંગુમ લંઘયતે ગિરિં. યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદ માધવ. જયતં સુરતપંગૌર મમ મંદમતૈર્ગતિ મત્સર્વસ્વપદાંબોજો શ્રી રાધા મદન મોહન. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યયૈવ ચ पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबसे पहले इस कृष्ण भावना मुक्त संघ अमेरारोड स्थित शाखा की ओर से रविवार इस कार्यक्रम में आप सब लोग का स्वागत है। और आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग इस कथा के बाद सीधा रथ यात्रा जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी कृपा करके जो उनके पास नहीं आते उनको दर्शन देने के लिए आज निकलेंगे। ये भगवान की कुछ जीवों के प्रति अत्यंत कृपा है, लेकिन इनके साथ साथ भगवान ये भी चाहते हैं कि जीव अपनी ओर से भगवान की शरणागति को स्वीकार करे, क्योंकि जब तक कोई जीव भगवत शरणागति स्वीकार नहीं करता है तब तक भगवान उनके प्रति कृपा नहीं करते हैं। ऐसे कृपा तो सबके ऊपर चलती है, लेकिन जो स्पेशल कृपा है जो कुछ ही लोगों के ऊपर भगवान किया करते हैं, उनकी भक्ति करने वालों के प्रति जो भगवान की कृपा है वो कृपा विशिष्ट कृपा बोला जाता है। ऐसे विशिष्ट कृपा की प्राप्ति के लिए जीव को अपनी ओर से शरणागत होना होता है। और इस संसार में ये देखी गई बात है कि जीव सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन शरणागति का जहां बात आता है तो वो सोचते हैं कि ये ठीक काम नहीं है। यद्यपि सबसे ठीक काम या सबसे सुंदर काम जीव के लिए यही बताया गया है कि वो अनन्य भाव से हम कृष्ण के संगत हो जाए, लेकिन जीव यही नहीं करता है। बाकी सबके प्रति शरणागति उनकी रहती है, माया के प्रति तो जितना बोलो उतना शरणागत जीव है, लेकिन भगवान के प्रति उनकी शरणागति में बहुत अभाव है। और इसी अभाव के कारण जीव इसी संसार में भटकता रहता है। और ज्यादा से ज्यादा इस संसार में भटकते हुए कदाचित कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, लेकिन मुक्ति भी जीव के लिए कोई बड़े आनंद की बात नहीं है। यद्यपि उसमें जीव के द्वारा वांछित उन आध्यात्मिक सुख है, आनंद है, लेकिन वो आनंद बहुत सीमित है, बहुत सीमित वह आनंद है। पर जो परमानंद की प्राप्ति जहां होती है तो वहां जीव के लिए उनका स्वरूपानुगत, उनके स्वरूप के अनुगत जो धर्म है उस धर्म की अपेक्षा भगवान रखते हैं कि जीव अपने स्वरूप को जाने और अपने स्वरूप के अनुसार वो मेरी सेवा करे, क्योंकि जीव का यही धर्म है और मेरे प्रति शरणागत होकर के वो मेरी सेवा में लगे, तो भगवान ये अपेक्षा करते हैं। बाकी मुक्ति भुक्ति तो ऐसा कहते हैं कि वो तो भगवान के द्वारा मारे गए जो जीव है, असुर लोग है, भगवान से द्वेष रखने वाले शिशुपाल कंस इत्यादि को भगवान ने मुक्ति दिया, तो मुक्ति बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीव प्राय देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मुक्ति के प्रयास में लगे रहते हैं, अपने स्वरूप में वो जाना नहीं चाहते। कुछ लोग इस संसार के दुखों से उब करके उन दुख निवृत्ति चाहते हैं, लेकिन वे लोग अपने या कभी कभी शास्त्रों में बताए गए उन ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होकर के भगवान से ऐक्य प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। देखा जाता है लेकिन भगवान को ये सब क्रिया उतना पसंद नहीं करते हैं। भगवान इतनी भगवान के प्रति उन प्रेम भक्ति को व्यक्त करे। सद्भाग्य से हम सब लोग एक ऐसे साधु से उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहते हैं या कुछ करते भी हैं कि जिनके द्वारा उन पूरे संसार में हरि नाम का कीर्तन के रूप में भगवान का प्रचार किया गया है। ऐसे हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी और इन्हीं के माध्यम से जगन्नाथ जी पूरे जगत के पर कृपा करने के लिए उन्हीं को माध्यम बना करके उन रथ यात्रा के जरिए पूरे जगत के जीवों पर कृपा करते हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि 365 दिन में करीबन 300 कुछ ऊपर दिन है जो रथ यात्राएं चलती है, उसका अर्थ रोज प्राय रोज विश्व में कहीं ना कहीं रथ यात्रा है। आपके मीरा रोड में, हमारे मीरा रोड में देखिए है, या मुंबई में देखिए, अभी परंपरा चालू होगी रथ यात्रा की। रथ यात्रा का मौसम मुंबई के लिए है, विदेश के लिए उनके अनुकूल टाइम में वो लोग भी इसी प्रकार रथ यात्रा निकाला करते हैं। वस्तुतः तो भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति उनकी कृपा के भाजन बनता है, श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचने वाला। किसी भी प्रकार से जीव के ऊपर कृपा भगवान करना चाहते हैं, लेकिन जीव को बस उनके पास जाना चाहिए। तो मैं कह रहा था तो उनके एक महान भक्त के द्वारा ये जो भक्ति पथ का स्थापना किया गया है वो एक महान पंथ है। कभी कभी हम लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे करके अपने उन स्वभाव के अनुसार इनको पकड़ते हैं। स्वभाव का अर्थ कुछ कर्मानुगत हमारा स्वभाव है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहते हैं, उन कर्म के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है और उन स्वभाव से हम लोग अपने अनुसार इन भक्ति मार्ग को समझते हैं या उनको अपने अनुसार लेना चाहते हैं। लेकिन वस्तुतः तो उसी भक्ति को हम लोग शास्त्र के अनुसार और साधु के अनुगत्य में इन भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इतना बड़ा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर श्लोक श्री ब्रह्मा जी की स्तुति में, यदि भी आज रथ यात्रा का वर्णन करना चाहिए लेकिन मैं उनको नहीं करके कुछ एक श्लोक के लिए सोचा हूं, आप उन श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण कीजिए, कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं है, है? उच्चारण नहीं करेंगे। इस श्लोक इस प्रकार है कि तय वही विदंती अति तरंती च देव मायाम स्त्री शूद्र हूं सबरा अपि पाप जीवा यद अद्भुत क्रम परायण शिक्षा स्त्रीय जना अपि किम उत्सुति धारणाये। इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने उन अद्भुत क्रम परायण शिक्षा इस संसार में जिनको मिला करती है, अर्थात यह अद्भुत क्रम परायण शील कुछ लोग हैं जिनको भगवान के भक्त कहते हैं, और हम लोग भी एक महान साधु का अनुगत्य पकड़ने की चेष्टा करते हैं। हमारे प्रयत्न से या यहां आने वाले प्रत्येक जीव को यही शिक्षा मिलती है कि साधु का उन अनुगत्य को पकड़िए और अपने जीव को उद्धार कीजिए, या अपने आप का उद्धार या माया से अति पार निकल जाइए, तरगिए। इसके अनुगत ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनको ऐसी शिक्षा इस जगत में प्राप्य है वो व्यक्ति अगर वो कुछ पाप योनि जीव है, जैसे तिर्यग इत्यादि पशु पक्षी इत्यादि जीव भी है, तो उन लोग को भी अगर ये कर्म परायण शिक्षा या अद्भुत कर्म परायण शील शिक्षा भगवत भक्तों जैसा स्वभाव प्राप्त करने की शिक्षा जो मिलती है जिनको, इसका अर्थ ये है ये अद्भुत क्रम शील शिक्षणम है। शील माने स्वभाव, भगवान के भक्तों का सा स्वभाव पकड़ने की शिक्षा जिनको प्राप्त रहती है, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो स्त्री शूद्र पुलकस पुलिंद या किसी भी प्रकार की योनि में अगर वो मनुष्य है उसको जाने दे दिए दीजिए, बोलते हैं अपने पाप के कारण अगर जीव ने पशु शरीर या पंखी का शरीर भी पकड़ा है और उनको भी साधु के द्वारा ये शिक्षण मिलता है तो वो लोग भी अतितरंती च, वो माया को उन सदा सदा के लिए छोड़ देता है और भगवान की उन अद्भुत भक्ति को वो लोग प्राप्त कर लेते। तब कहते हैं कि ऐसे जीव जो पाप जीव या तिर्यक पशु इत्यादि जीव तक ये स्वभाव को या इन शिक्षण से माया को अति तरंती तैर जाते हैं तो फिर कहते किम उत सुति धारणा। ये जो लोग शास्त्र में बताए गए सदाचार का आचरण करने वाली मनुष्य योनि है, वो मनुष्य योनि के लिए फिर क्या कहना, या उनमें जो उच्च कक्षा का स्वभाव ब्राह्मणशील स्वभाव इत्यादि है उनके लिए तो फिर बात ही क्या है। तो बहुत सुंदर इस श्लोक में शिक्षा मिलती है। इसके आगे के श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि देखो नारद जी के उपदेश कर रहे, नारद जी के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने उन प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देखो नारद जी, आपने पूछा कि वस्तुतः आप ध्यान किसका करते हैं, तो बोलते जिनकी ये माया है, उन माया के कारण समस्त जगत मुझे ईश्वर समझता है, उसी भगवान की मैं पूजा करता हूं या उसी भगवान का मैं सतत ध्यान करता हूं, और उसका ध्यान करने मात्र से तो मेरी वाणी कभी निष्फल नहीं होती है और मेरी इंद्रिया असत पथ पर नहीं जाती और मेरा मन कभी भी गलत संकल्प नहीं करता है। जब मैं उत्कंठा युक्त होकर के उन भगवान का ध्यान करता हूं, उनका आश्रय ग्रहण करता हूं, तो तब कभी भी मेरा मन असत संकल्प नहीं करता है। बोले ऐसे भगवान की माया को भी बड़े बड़े लोग समझते नहीं है। कितने बड़े बड़े लोग, जो इन संसार के पदार्थों को तुच्छ समझ करके छोड़ दिए हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी कहते हैं कि माया को समझते नहीं, तैरने का बात दूसरा है, वो समझते भी नहीं है माया। वो समझ रहे हैं कि नहीं, हम लोग मुक्त हो गए हैं, या मुक्त है जीते जी, क्योंकि संसार के सब पदार्थों को हमने छोड़ दिया है और किसी भी पदार्थ की स्पृहा नहीं है। और देखिए उन आत्मा से मिलने वाले आनंद को, आत्मानंद को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ऐसे लोग भी बड़े धोखे में हैं। और हमारे आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि माया का ये आखिरी फंदा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव को फंसाने के लिए ये माया का आखिरी पाप माया फेंकती है, मुक्ति दे करके जीव को, कि अगर ये मुक्ति लेता है कि नहीं, अगर वो पकड़ लेता है तो योग्य, भक्ति के योग्य वो नहीं। लेकिन वो लोग ये मान लेते हैं कि वो अब माया तैर गया। अरविंद आक्ष विमुक्त मानी ना तो अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धया। ब्रह्मा जी दशम स्कंद में ये प्रार्थना करते हैं कि भक्तों से अन्य इतर लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ये अरविंदाक्ष, ये कमल नयन भगवान, वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग मुक्त हो गए हैं, ऐसा मानते मात्र है। तो क्या होते होते नहीं है, बोले ना क्यों, तो कहते युष्मद अंग्रय अनादित्य, आपके चरण कमलों का जिन्होंने अनादर किया है वह व्यक्ति कभी मुक्त हो सकता है, कभी नहीं। ये लोग आपके चरण कमल का अनादर करते हैं या आपके स्वरूप का एक तरीके से वो लोग अनादर करते हैं। सदभाग्य से हम लोग इन आध्यात्मिक शुरुआत से ही भगवान के उन स्वरूप को पकड़ना चाहते हैं। भक्ति या भक्तों के अनुगत जो जीव होते हैं उन लोग का एक महासदभाग्य उदित हुआ है। शायद हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं मालूम नहीं है? लेकिन उनको इतना बड़ा सदभाग्य कहा जाता है, जो सदभाग्य ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित कुछ ही लोगों को प्राप्त है। ब्रह्मा जी आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं कि ये इसको कोई कोई व्यक्ति, जैसे महान व्यक्ति इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गादी, अमृत सगर, कहते सत धनवा, रंतिदेव, भीष्म, बलि और दिलीप, सौभरी, उतंक जैसे बड़े बड़े लोग, ये दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं। उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन विश्व इतिहास में ये लोग विख्यात व्यक्ति है। जैसे महाराज रंतिदेव की कथा है, श्लोक है, सुबह आप लोग बैठे थे, राधा कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर तरीके से उनको समझा रहे थे इस श्लोक को। तो महान व्यक्तित्व माना जाता है संसार में, जिनका गुण इस पृथ्वी पर नहीं देवलोक में जिनका गुण गाया जाता है। अरे देवताओं में देवदेव महादेव भी गुण गाते हैं, इन भक्तों का गुण उन महादेव जी भी गाते हैं। अब देखिए इससे बढ़कर क्या है, इससे बढ़कर कि महादेव जी अगर किसी का गुणगान में लग जाए उससे बढ़कर कोई व्यक्तित्व हो सकता है संसार में, या वो वस्तु कुछ सस्ती हो सकती है? महादेव जी को क्या अप्राप्य है इस संसार में? कुछ वस्तु अप्राप्य है? वो मुक्ति किसी को ऐसे ही जेब में से कोई चवन्नी निकाल करके दे उसी प्रकार दे सकते हैं, उसी प्रकार मुक्ति दे सकते हैं, ये अधिकार है शिव जी के पास। कहते हैं कि काशी में जो जाते हैं जब मुर्दा लेकर आने के लिए, तो उनके कान में शिव जी राम नाम बोलकर उनको मुक्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मुर्दे के कान पर भगवान शिव मुख रख के बोलते राम राम और वो मुक्त हो जाता है। इद्दे में रहा है ना जीव, अभी उनकी अंत्येष्टि क्रिया होने जा रही है और 12वें तक उनको जो जो भी दिया जाता है वो मिलता है। शिव जी जानते हैं, वाली बात ही राम नाम दे करके उनको मुक्ति देते हैं। देखिए अधिकार है शिव जी का, उनको क्या अप्राप्य वस्तु है, लेकिन वे भगवान शिव जैसे व्यक्ति भी गुणानुवाद करते हैं। एक श्लोक में वो बताते हैं, देखो स्वधर्म निष्ठप जन्म भी पुमान विदंताम एति तत परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वचनो पदम यथा अहम विबुधा कालात्यय। ये प्रत्येक को सुनाया गया श्लोक है भगवान शिव जी के द्वारा। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति उन धर्मनिष्ठ होकर के 100 जन्म पर्यंत उन धर्म का पालन करे, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करे 100 जन्म पर्यंत, 7 जन्म निष्ठ निष्ठा के साथ 100 जन्म पर्यंत वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करता है तो ब्रह्मा की पदवी को वो प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। जो इस संसार के सबसे बड़े जीव का पोस्ट है या सबसे बड़े जीव माने जाते हैं। और शिव जी और भी कहते हैं कि उन वीरन की पदवी को, पदवी से भी ऊपर एक पदवी है, कहते हैं अगर उससे भी ज्यादा किसी का पुण्य है तो बोलते तत्व परम हिमाम, वो कहते मेरी अवस्था को प्राप्त करते, या मैं जहां रहता हूं इस संसार का मुक्त विभाग है, ये माया का वहां कुछ नहीं चलता है, ऐसा एक धाम है भगवान शिव जी का, महेश धाम उनको कहते ब्रह्म संहिता में। तो कहते उन महेश धाम को प्राप्त करते हैं, लेकिन कहते उन अव्यक्त भागवतो अथ, लेकिन जो भक्ति मार्ग पर भक्ति मार्ग का अनुसरण या भक्ति मार्ग की सुंदर शिक्षा प्राप्ति का जिनको अवसर मिला है वो व्यक्ति इसी जन्म में, हम लोग जहां द्विपरार्ध साल के बाद में जाएंगे या कम से कम अभी ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गया है तो ब्रह्मा जी का एक परार्ध साल के बाद में मैं और ब्रह्मा जहां जाएंगे वहां ये लोग हमारी या ब्रह्मा जी की एक सेकंड में चले जाते हैं। ये अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा कहा जाता है इनको, इनको ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यद अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, कहते ऐसी शिक्षा जो भगवान के भक्तों का सा स्वभाव प्राप्त करने की ट्रेनिंग शिक्षा जिनको मिलती है यह अद्भुत शिक्षा है। महासदभाग्य से हम लोग को ये अवसर मिला है, उनको समझना चाहिए। और उसको समझने का सबसे पहला ये निशानी क्या है, उनको कोई समझा है तो सबसे पहला निशानी क्या है उनका, सबसे पहला उनका निशानी यही है कि वो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत होते हैं, अनन्य भाव वहीं से शुरुआत होता है। यद्यपि हम लोग ये अनन्य भाव से भगवान का शरणागत अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन अनन्य शरणागति ही जी को वहां ले जाने वाली है। ये हम लोग शिक्षा ले रहे हैं अभी कि कैसे शरणागत हुआ जाए, तो इसके अनुक्रम में ये श्रवण कीर्तन इत्यादि जो उपाय हम लोग के द्वारा होता है और जो नियमों का पालन होता है और जो वर्जित जितना भी ये निषिद्ध बताया गया शास्त्र में उनका पालन हम करते हैं, ये सारे विधि निषेध भगवान की शरणागति को पकड़ने के लिए है। एक बार शरणागत हो जाए तो उनके बाद में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन उन शरणागत होने के लिए सबसे पहले मुक्ति तक के भाव को छोड़ना पड़ता है। स्वर्ग अपवर्ग की भी कामना व्यक्ति के हृदय में नहीं होती है, वो व्यक्ति अनन्य शरणागत माना जाता है। अरे मुक्ति की कामना छोड़ दीजिए, अभी भी हमारे हृदय में इस संसार भोग की कामना मनरा रही है, हैं? है कि नहीं? आप लोग मुझे कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग तो कोई कामना नहीं करते, मुक्ति तक की कामना नहीं करते। वस्तु तो ऐसा बात नहीं है, खाली कहने में हम लोग भले ही या मानने के लिए भले मान लेते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ पदार्थ जैसे इतनी सारी गाड़ियां हैं उनमें से मर्सिडीज एक गाड़ी है, उनको देखते तो हम आसक्त हो जाते हैं नहीं? अरे रे ठीक है, भजन करते थे कोई दिक्कत नहीं है भजन में, क्या मर्सिडीज वाले भजन नहीं कर सकते हैं? राजा लोग किए हैं। कुछ भोग में ही हम लोग अटक जाते, ही भोग जो संसार के भोग है उसमें हमारा चित्त अटका हुआ। सद्भाग्य से हम ये महान ये अद्भुत क्रमशील शिक्षा की प्राप्ति के उपाय में है, इसलिए सुनिश्चित ऐसा विचार जब भी उठता है तो उनके ऊपर थूक देना चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। यहाँ का कोई भी ऐश्वर्य कोई भी भोग नहीं चाहिए, बल्कि आता है तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, सोलह माला जब उसके लिए करना चाहिए कि ये छूटे, ये भाव छूटे, या नरसिंह देव को नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति जो भाव है उस मिथुनी भाव छूटे या इंसान की वासना छूटे। ये इन शिक्षा में एक अत्यंत आवश्यक शिक्षा है, और उनके बाद में जो शिक्षण मिलता है वो शिक्षण वो अद्भुत उन भाग्य को उत्थित करने वाला होता है। तो हम लोग जो दीक्षा शिक्षा लेकर के जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वो मार्ग कोई सामान्य मार्ग नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि दृढ़ता के साथ उन शिक्षा क्रम को पकड़े। हाँ, बहुत आवश्यक है। उस पकड़ने का अर्थ क्या है, जैसे आप लोग कई समय से एक कथा सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग के हृदय में दीक्षा की इच्छा होती है, उन क्रम पद्धति को पकड़ने का ये पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप। व्यक्ति के हृदय में कामना हो, इच्छा हो जाए कि हम गुरु ग्रहण करेंगे। हाँ, क्योंकि चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में ये बात लिखे हैं। आइए जरा उन श्लोक की, चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देखा जाए, बहुत अद्भुत टीका उन्होंने लिखा है। यद्यपि श्रीधर महाराज की टीका भी सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर मुझे ये श्री चक्रवर्ती ठाकुर की टीका लगा। उन टीका के अंतर्गत जाने से थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बोले न केवलम एते महान्ते अपितु दीनहीना अपि इतिहास ते वै इति। इस श्लोक में ते वै शब्द आया है, तो कहते हैं ते वही जिसको वे उन अद्भुत क्रम परायण शिक्षा जो मिलती है वे लोग, कहने का अर्थ ये है। तो केवल महान्त लोग वहां नहीं जाते, ऐसा बात नहीं है। कहते हैं अगर जिनको भी इस संसार में वो ट्रेनिंग मिलती है अद्भुत उत्तमा अधम विवेक चन शून्य क्रम पाद न्यास, क्रम पाद न्यास को कहते हैं इसको पकड़ने की चेष्टा, जैसे हम लोग कर रहे हैं उन दीक्षा शिक्षा लेकर के, या कुछ लोग दीक्षा के लिए उत्सुक है कि हम लोग भी दीक्षा लेंगे, और कुछ लोग विचार रहे हैं, सोच रहे हैं अरे दीक्षा लेकर के परतंत्रता आ जाएगी, फिर गुरु जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो कुछ लोग डरते और कुछ लोग समर्पित होकर के वो दीक्षा शिक्षा ले लेते हैं। बोले देखा जाएगा आगे जो होगा, एक बार शुरू कर दे बहुत अच्छा है, धन्य है वो व्यक्ति। क्योंकि अगर यहां तक कोई पहुंच गया, दीक्षा लेने के लिए ठान लिया, या दीक्षा ले लिया जिन्होंने, अगले जीवन में मान लीजिए उनका मृत्यु हो जाए, वो अगले जीवन में 100% को गुरु मिलेगा वैष्णव के रूप में, ये सुनिश्चित है। क्योंकि ये अद्भुत क्रम पर शिक्षा है। उसमें कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसको थोड़ा सा भी इसमें किया गया प्रयास निष्फल नहीं जाता है। कैसे उस श्लोक है भगवद गीता का, नेहाप अधिक्रम नाश सोचती है। हाँ, जिनका अधिक्रम, जिनकी शुरुआत का भी नाश नहीं होने वाला है, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। और प्रत्यवाय का अर्थ जिन में कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य चायते महत्वयात्। लेकिन थोड़ा सा किया गया जो आचरण है वो महाभय से जीव को मुक्त कर देता है। तो देखो ये क्रम का अर्थ पादन न्यास कृपा संबंधी जत्तस्य, ये जो पाक्रम है वो कृपा संबंधी है। कृपा संबंधी का क्या अर्थ है, बोले तत्स्य भगवत परायण ये भक्तस्तेषां शील शिक्षा। बोलते जो भगवान के परायण, जो नारायण परायण जीव है, भगवान के भक्त लोग हैं, उनको जो शिक्षा मिलती है तो उस शिक्षा के मार्ग में ये पदक्रम न्यास होता है जीव का। हम सब लोग उसी मार्ग को पकड़ते हैं। कहते यहां कहते भक्त स्पेशम शील शिक्षा तत् शिष्या भूतवा शीलम शिक्षन्ते एते। जो ऐसे नारायण परायण जीव जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज या हमारे गुरुजन, तो कहते हैं तो तत् शिष्या भूतवा, उन लोग के शिष्य होकर के कहते हैं उन शील का शिक्षण मिलता है, उन स्वभाव पकड़ने का शिक्षा वहां मिलता है। इसीलिए जो लोग ये विचार कर रहे हैं कि गुरु करे कि नहीं, उनको ये विचार वो अवधव वाला विचार को त्याग करके लिस्ट में नाम लिखा देना चाहिए कि हम लोग गुरु ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है। और उसमें भी ये अद्वितीय मार्ग, ये गौड़ी संप्रदाय है, उनका तो कहना ही क्या। लेकिन भक्त का अनुगत्य चाहिए, और भक्त का अनुगत्य किसी में ये लिखा गया है, कहते तत् शिष्या भूत्वा, कंडीशन रखा है चक्रधी ठाकुर, उनकी शिष्य हो करके उन स्वभाव का शिक्षण को प्राप्त करें। हम लोग उन स्वभाव, उन अद्भुत क्रम है ये, ब्रह्मा जी अपने मुख से बोले अद्भुत क्रम सिल शिक्षा, ये वैष्णव स्वभाव पकड़ने का शिक्षण है। तो बोलते हैं ये तेज जो कोई भी हो, वो कहते तिर्यक जना, यहां लिखा है इसको मूल श्लोक में कि तिर्यक जिना जना अपि, तिर्यक का अर्थ तिरछा चलने वाला व्यक्ति, पशु इत्यादि। ये कहते कि हंस गज सुख सारिका दय गुरुमुखात सुतम नाम रूपाधिकम शीघ्रम ये धारयंती। अगर कोई व्यक्ति हाथी की योनि में है, गजा लिखा या हंस या सुख सारी का, जैसे पैरोट इत्यादि को, पोपट को पढ़ाया जाता है, राम 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 राम, तो पोपट राम राम करता है, तो जब वो लोग राम राम करके इन माया को अति तरंती थे, माया को सदा के लिए पार हो जाता है माया से, ये अद्भुत शिक्षण है। सदा के लिए वो ऐसा तिर्यक जन भी गुरुमुखात सुतम नाम रूपाधिकम, भगवान के नाम रूप उनके गुणों की चर्चा उन गुरुमुख से सुन करके शीघ्रम ये धारयंती, ये लोग जब धारण कर लेते हृदय में, तब कहते सदाचार का पालन करने योग्य जो मनुष्य है तो वो लोग प्राप्त करेंगे, उनमें कौन बड़ी बात है। तो देखिए हमारे पास ये मनुष्य शरीर है, तिर्यक शरीर नहीं है, और ये अद्भुत क्रम परायण शिक्षा के लिए हमको आलान मिला है भगवान से कि हम उनको प्राप्त करें, उठाए ले, ये भगवान का अद्भुत कृपा है। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि भगवान का क्या कृपा है, क्या कृपा है, तब तक ये श्लोक मिल गया हमको। अभी विचार कर रहा था कि इसमें कौन बड़ा कृपा है, इसमें कौन बड़ा कृपा है, तब तक ये श्लोक मिल गया। और जैसे चक्रवर्ती ठाकुर को मैंने देखा है? मैं बोला ओहो, भगवान का वास्तव में बहुत बड़ा कृपा है, और स्पेशल कृपा जिनको बोलते हैं, मैं पहले वर्णन किया कि स्पेशल, ऐसे तो सारे जीवों के भगवान का कृपा है, भगवान की कृपा के बिना जीव का एक काम भी नहीं होगा, एक काम नहीं, एक सांस नहीं ले सकता है भगवान की कृपा के बिना है? हम सांस ले रहे हैं वो भगवान की कृपा है, लेकिन स्पेशल कृपा में आना चाहिए। मनुष्य होकर के स्पेशल कृपा में न आए, इनको चूक जाए तो एक बार बहुत बड़ा धोखा खाते हैं हम लोग, बहुत बड़े धोखे में हम लोग हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि आचार्य धर्मान विचार्य वेदान और परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थान विज्ञान गौर पद पाद सेवाम वेदादि दुर्लभम पद्विम न विंदे। बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अनेक जन्म तक धर्म का आचरण के आचार्य धर्मान विचर्य तीर्थान, तीर्थों का विचरण करे, धर्म का पालन करे, और कहते विचार्य वेदान, वेदों का विचार करें पूरे जन्म पर्यंत। अरे परिचर्य विष्णु, विष्णु की परिचर्या क्यों नहीं करता है? हाँ, जरासंध तो करता था, ब्राह्मणों का सेवक था और विष्णु की पूजा करता था, जरासंध देखा गया है। लेकिन श्री कृष्ण को शत्रु मान रहे थे। देखो ऐसे नहीं लिखा है, इस श्लोक को हमारे आचार्यों ने लिखा है, बिना न गौर प्रिय पाद सेवा, गौरांग महाप्रभु की कृपा पात्र व्यक्ति का सेवा जब तक नहीं होता है, न विंदेत वेदादि दुष्प्राप्तम पदवीम, वो व्यक्ति को इन वेदों के द्वारा दुष्प्राप्त वस्तु है भगवान की भक्ति है, खास करके भगवान की प्रेमा भक्ति ये दुष्प्राप्त है वेदों के लिए भी, न बिंदित उनको नहीं पकड़ सकता है। तो हम लोग धन्य है कैसे गौर प्रिय एक व्यक्ति है, उनके द्वारा स्थापित संस्था है। और ऐसा कहते हैं हमारे इस्कान में कि श्रील प्रभुपाद महाराज कहे कि इस्कॉन इज माई बॉडी, तो क्यों नहीं उन बॉडी की सेवा कर लिया जाए, उसमें तान मान दान ये जो कुछ भी हमारे पास है अपने ही समझ करके, ऐसे भी अपना नहीं है, ऐसे सबसे छूटना वाला है, कुछ भी चीज तो जाएगा नहीं हमारे साथ, वो भगवान का ही है और वापस ले लेते हैं। इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, किया भी तो उनकी प्रशंसा करके जाना तो होता है सबको, तो जा रहा है, छूट रहा है सब कुछ, ऐसे ही छूट रहा है, तो क्यों नहीं उनमें निश्चावर करे। और उसके इतर क्यों कोई दूसरा उपाय हम करें, इतना सुंदर व्यवस्था जब भगवान के द्वारा इस संसार में स्थापित हुआ है, और स्पेशली हम लोग को एक मौका मिला है इस हरे कृष्ण मूवमेंट में आने का, जो मूवमेंट श्रील प्रभुपाद महाराज का शरीर माना जाता है, तो उनकी तन मन धन से सेवा कर लेना चाहिए। और खास करके इस अद्भुत क्रम परायण शिक्षा पाने का भारत तक प्रयास कर लेना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रयत्न, अपनी ओर से कहीं कमी न छूटे, किसी प्रकार का कमी, जैसे जो महाराज बताए हैं दीक्षा शिक्षा लेकर के 16 वाला जब बिल्कुल करना है, 16 क्या 32 करना है, 32 क्या 64 तक जाना है, और चक प्रयास उसको बोलते हैं, बार चक प्रयास, जितना हो सके इसको भगवान देखेंगे ना, कि ये लोग इन कम पद्धति में आकर के पदन्यास करके इसमें अपने फुल अपने तन मन बाल से लगे हुए हैं, सब बाल उनमें यूज कर दिया है। अगर नहीं भी हुआ, मान लीजिए हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो जिम्मेवारी भगवान का होगा हमारा, लेकिन शरणागत होकर के बाकी कोई मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है इनके अलावा, कोई मुक्ति भी प्राप्त किया तो उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, क्योंकि देखो वो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग भगवान के विग्रह को नहीं मानते हैं। इसे उनके लिए एक श्लोक दिया गया है, वो कहते हैं कि ना अनुब्रजंती यो मोहाद ब्रजंतम जगत ईश्वरम ज्ञानान दद्द कर्म अपि स्वभवित ब्रह्म राक्षसा। जिस व्यक्ति का ज्ञान के कारण उनके कर्म अलग गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी, मुक्त व्यक्ति भी, ये कह रहे हैं शास्त्र, ऐसा मुक्त व्यक्ति भी अगर ब्रजंतम जगदीश्वरम, जगदीश्वर जाते हैं, जैसे आज जाएंगे कहां जाएंगे, उन जीवों के ऊपर, सामान्य जीवों के ऊपर, उनको इस ये अद्भुत क्रम शिक्षा में खींचने के लिए जगन्नाथ जी निकलने वाले हैं, तो उनका अनुगमन जो व्यक्ति मूढ़ नहीं करते हैं, अपने आप को मुक्त समझते हुए उनका अनुगमन नहीं करते हैं, उनके पीछे नहीं चलते रथ यात्रा में, उनके आगे नहीं चलते हैं, तो कहते हैं स मोहाद, वो बहुत बड़े मोह में है, वो ब्रह्म राक्षस तक हो सकते हैं। आप ना बताइए, यद्यपि अपने कर्मों को जला करके छा कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म राक्षस होने में देर नहीं लगेगा। और यज्ञ जीवन मुक्ता अति पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी यद अचिंत महाशक्त भगवती अपराजिना। बोलते ना अचिंत महाशक्ति भगवान से अपराध या भगवान के जो अपराधी है, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि जीवन मुक्तास्ता, वो लोग भले ही जीवन मुक्त हो गए है? तो वैसे व्यक्ति भी भगवत अपराधी होने के कारण वो वहां से उन पदवी से गिराए जाते हैं। पतंति तद अदत, कहते उन बड़े बड़े पुष्ट पदवी से उनका अधपात होता है। क्यों? युष्मद अंग्रय अनादृत्य, आपके चरण कमल का वो लोग अनादर करते हैं, अपने आप को बहुत महान सोचते हैं, और भक्तों को भावुक सोचने वाले लोग जो मुक्ति पकड़ने की चेष्टा करते हैं वो लोग का कोई खैर नहीं है। वो लोग मान लेते हैं माया उनकी खैर बिगाड़ देती है, लेकिन भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हम जिस क्रम परायण शिक्षा में है, भगवान हम लोग को उत्साहित करते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्राय अभिक्रम का नाश, शुरुआत का नाश नहीं होगा और मुक्तिवादी का सब कुछ निष्फल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा नहीं लेंगे क्योंकि बस रेडी है और हम लोग को जाना है अनुवर्जन करने के लिए।